शिल्लू बहन से कहेंगे कि आज का जो विषय है बेफिकर बादशाह। ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में किस प्रकार से बेफिकर बादशाह रहे, या ये कहें कि ब्रह्मा बाप समान हम बेफिकर बादशाह की स्थिति कैसे बनाए, इस विषय को स्पष्ट करेंगे आदरणीय शिल्लू बहन जी।
ओम शांति। आज सवेरे हम सब ने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने, बाप समान बनना है तो क्या करना होगा, बाप के समीप आना होगा, और समीप आने के लिए क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो फॉलो फादर करना होगा, बाप के कदम के पीछे कदम रखना होगा, तब हम बाप के समीप आ सकेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया और कैसे हम उसको फॉलो करें तब हम बाप समान बने। तो ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह कैसे बने? वैसे तो बाबा का ज्ञान हमें बेफिक्र बादशाह बना देता है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये सब ज्ञान के अलग अलग विषय हैं, जिसको समझने से हम बेफिक्र बादशाह सहज बन सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इनको कैसे अपनाया और बेफिक्र बादशाह बने? सबसे पहले आत्मा का ज्ञान, जो वास्तव में आदि सो अंत, शुरू में भी बाबा ने यही पाठ पढ़ाया और बाबा कहते अंत में भी यही पाठ पक्का करना होगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हर मुरली में बाबा यह पाठ पक्का कराते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे ये पाठ पक्का किया जिससे वो बेफिक्र बादशाह बने? क्योंकि आत्मा के पाठ से ही हम नष्टो मोहा बन सकते हैं, और नष्टो मोहा बनने से ही बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये पहचान दी कि तुम आत्मा हो और सबको आत्मा रूप में देखो, तो ब्रह्मा बाबा ने इस पर बहुत पुरुषार्थ किया, मालूम है ना? बाबा की लौकिक युगल साथ में रहती थी, बाबा के बेटा बहू पोते सब साथ में रहते थे, पूरा परिवार साथ में था। तो बाबा की दृष्टि कैसे बदल गई, यशोदा के प्रति कैसे बदल गई, बहू के प्रति कैसे बदल गई, बहुत मोह था बाबा का बहू में। बाबा की बहू ब्रिजेंद्रा दादी बहुत सुंदर थी, जैसे निर्मल शांता दादी थी ना, ब्रिजेंद्रा दादी भी बहुत सुंदर थी। तो बाबा उनको लौकिक जीवन में जौहरी तो थे, तो बाबा अपने बहू को श्रृंगार करके राजाओं के पास ले जाते थे और वो रानियां देखती थी कि अरे इनके बहू को इतना सुंदर हीरों का नेकलेस पड़ा है या हार पड़ा है या जो कुछ, तो कहती थी हमको बस ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही जैसे इसने पहना है। तो मानो उनकी बहू एक एडवर्टाइजमेंट का रूप थी, बेटी भी थी पर बेटी तो ससुराल में थी तो बहू तो बाबा के साथ थी। तो बाबा एक और सेट लेकर के आते थे या कई बार समझो नहीं भी लेकर आए तो आप तो बाबा कहते थे कि हाँ मैं लाया हूँ, और ब्रिजिंद्रा दादी को कहते थे ये निकाल दो, मैं आपको इनसे और बढ़िया बना के दूंगा। तो वो इसलिए पहनाता था ताकि वो बहू जो है वो मना रानियां उनको देख करके पसंद कर ले। तो बहुत बिजनेस में भी बहुत होशियार थे बाबा। तो इतना और बहू भी इतनी आज्ञाकारी, जो एक बच्ची अपने पिता की भी न हो उतनी बाबा की बहू बाबा की आज्ञाकारी थी। तो जब बाबा को ये ज्ञान मिला तो मोह तो बहुत था, पत्नी में भी बहुत मोह था, ऐसे नहीं कि नहीं था, पत्नी भी बाबा की बहुत आज्ञाकारी, पतिव्रता स्त्री क्या होती है वो बाबा वो उनकी युगल से पता चला। रोज सवेरे बाबा के पैर धोती थी जैसे कोई देवता के पैर धोती है, आजकल कोई करे अपने पति के पैर धोए। और लेकिन कभी भी बाबा ने उनको एक बार भी डांटा नहीं था, क्योंकि बाबा तो बहुत प्रेम स्वरूप थे। एक बार भी डांट क्या होती है यशोदा बहन ने कभी नहीं सुनी थी बाबा से, क्योंकि बाबा को बहनों के लिए माताओं के लिए बहुत रिस्पेक्ट था पहले से। बाबा को अपनी लौकिक माँ नहीं थी, बचपन में ही माँ गुजर गई थी तो पिता नहीं पाला था, तो इसीलिए माताओं बहनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। तो कैसे बाबा की दृष्टि बदल गई, तो और उनकी भी दृष्टि बाबा के प्रति बदल जाए, क्योंकि इतने सारे बच्चे अभी हो गए, खाली लौकिक परिवार तो नहीं था, लौकिक परिवार भी बाबा के साथ रहने लगा। तो यशोदा की दृष्टि कैसे बदले, ब्रजिंद्रा दादी की दृष्टि कैसे बदले, तो बाबा क्या करते थे दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, राधे बाबा का बहू का नाम था, राधे आत्मा है, तो यशोदा आत्मा आत्मा आत्मा। तो वो भी जब पढ़ेंगी तो क्या होगा, दीवारों पर लिखा रहेगा। तो पढ़ती थी तो भाई कैसे बाबा हमको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, बाबा के अंदर की पवित्रता इसी आधार पर बढ़ती गई, क्योंकि यशोदा को भी आत्मा रूप में देखना है। मुझे याद आता है कि महात्मा गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब उसने भारत छोड़ो का नारा दिया, यानी अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़े, तो उसने कहा कि सत्य और अहिंसा के आधार पर ही मैं ये कार्य करूंगा, लड़ाई करके नहीं, खून बहा करके नहीं। तो उसने कहा ये सत्य और अहिंसा का जो माना प्रभाव वे तब होगा जब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो उसने बहुत कोशिश की कि जो उनकी युगल थी कस्तूरबा कहते हैं, कैसे इनके प्रति मेरी पवित्र दृष्टि जाए। लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा है कि बहुत कोशिश करने पर भी मैं सफल नहीं हुआ कि मैं अपने इंद्रियों को दमन करूं, संयम में रखूं और पवित्रता का मैं पूर्ण पालन करूं ब्रह्मचर्य का, तो सफल नहीं हुआ। लेकिन उसने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बातें वो बहुत पढ़ता था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कैसे अपनी युगल शारदा माँ थी, तो कैसे शारदा माँ को माँ कहा, क्योंकि बचपन में शादी हो गई जब उनको कुछ समझ भी नहीं थी और माँ बाप ने गांव में क्या करते, तुम्हारी लड़की तुम्हारा लड़का तो विवाह कर देते। लेकिन वो क्या कहते, वो ससुराल तो बाद में आते हैं, तो अपने मायके में ही थी परंतु नाम तो पत्नी थी ना, पत्नी तो थी। तो जैसे मोदी जी का भी आप लोगों को मालूम है ना, नरेंद्र मोदी का भी बचपन में शादी कर ली थी, परंतु इनके मोदी जी के बुद्धि में तो बहुत कुछ था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, कोई तो सन्यासी बनना था, बहुत कुछ करना था, घर छोड़ दिया, जंगलों में गया, पहाड़ों पर गया, हिमालय में रहना है, अब शादी तो कर ली, अब उसको कहां ले जाएगा। तो उसकी पत्नी का बयान आया था टीवी पर कि अभी तक भी वो उसको जैसे देवता के रूप में पूजती है, भले अपने भाई के पास रहती है लेकिन उसको देवता के रूप में पूजती है अभी भी। मानो ये भी अभी भी उदाहरण है कि इसने कैसे अपने आप को स्वतंत्र किया। तो एक बार उसने कहा अपने नरेंद्र मोदी को कि मैं भी आपके साथ चलूं, तो उसने कहा तुम कहाँ मेरे साथ चलोगी, मैं तो भटकता रहूंगा, तुम भटकोगी क्या मेरे साथ, इसलिए तुम यही ठीक हो। लेकिन स्वीकार तो किया कि हाँ ये मेरी पत्नी है। परंतु महात्मा गांधी ने जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मिसाल देखा तो उसने शारदा को भी अपने साथ रखा, उनकी युगल थी, लेकिन उनको पहले दिन से ही माँ कहा, माँ ये मेरी माँ है। तो माँ की दृष्टि से देखा, क्योंकि वो माँ का भक्त था, काली माँ का भक्त था, तो इनको भी वो माँ ही कहता था हर बात में, माँ माँ माँ, कोई भी बात है किसी को कुछ चाहिए जाओ माँ से पूछो, यानी एक तो काली माँ लेकिन शारदा माँ उनसे भी। तो जब महात्मा गांधी ने ये बात पढ़ी उनकी, तब तो आया कि मैं भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन तब कर सकूंगा जब मैं कस्तूर, उसकी पत्नी का नाम था, उसको मैं बा कहूँ, गुजराती में बा कहते हैं माँ को, तो इसलिए उसके बाद उसने नाम कस्तूर के बदले कस्तूरबा, वो कस्तूरबा ही कहता था। तो मानो कि कस्तूरबा जब से उसने कहना शुरू किया उसकी दृष्टि बदल गई। तो मैं कई बार सोचती थी कि जब ब्रह्मा बाबा की दृष्टि भी बदली अपने युगल के प्रति, बाबा की दृष्टि कैसे हुई होगी, तो किसको मेहनत लगी होगी, यशोदा को बाबा को पिता रूप में स्वीकार करने में, या यशोदा को बाबा को यशोदा बेटी रूप में स्वीकार करने में, क्योंकि माँ थोड़ी कहेगा, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा, तब उनके लिए तो सारे ही बच्चे थे, तो यशोदा भी कौन थी, बच्ची थी ना, बाबा उनको बच्ची कहते थे, जैसे मम्मा के लिए बताते हैं कि जब सबकी माँ बनी तो मम्मा की लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। तो आप सोचो माँ अपने बेटी को माँ कहेगी क्या, बेटी कहेगी माँ, लेकिन दृष्टि ऐसी बदल गई जो मम्मा की माँ भी अब मम्मा को मम्मा कहती थी, और बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए बाबा भी मम्मा को मम्मा ही कहते थे, और कभी बेटी भी कहते थे कभी मम्मा भी कहते थे, ताकि सब मम्मा को मम्मा कहे। जैसे कोई एक को कहेगा ये मेरी मामी है तो वो सबकी जैसे मामी हो जाती है ना ऐसे। तो इसी प्रकार से तो कभी संकल्प चलता है कि किसको मुश्किल लगा होगा पहले, यशोदा को या बाबा को, यशोदा को कि बाबा को, क्या समझते, बाबा को मुश्किल लगा होगा यशोदा को बेटी बनाने में, क्योंकि जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा की दृष्टि पूरी बदल गई हरि के प्रति, सबको बच्ची 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 कहते थे, लेकिन यशोदा को तो थोड़ा तो लगा होगा कि नहीं, बाबा के आगे घूंघट भी निकालती थी, आपने देखा ना एक फोटो बाबा की युगल घूंघट निकालती थी ना, सबके आगे घूंघट ही निकालती थी, तो बाबा के आगे तो और ही घूंघट निकालती थी जैसे। तो कहने का भाव है कि बाबा की दृष्टि तो एक सेकंड में बदल गई, लेकिन औरों की दृष्टि भी, लौकिक की भी दृष्टि बाबा के प्रति बदल जाए, इसलिए बाबा लिखते थे यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। और बाबा ने कितना अभ्यास किया, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये अपने साथ अभ्यास किया। इसलिए आप देखेंगे साकार मुरलियों में बाबा कई बार इसका वर्णन करते हैं कि यहाँ बच्चे कैसे आत्म अभिमानी बनना है। तो एक बच्चा लिखता था बाबा को, फलाना फलानी आत्मा बाबा मन आत्मा बाबा को लिख रहे, आत्मा इस आत्मा ने, इस आत्मा ने। तो फिर बाबा ने उसको जवाब में लिखा कि खाली इस आत्मा ने नहीं कहो, शरीर का नाम तो होगा ना, खाली आत्मा आत्मा से थोड़ी समझ में आएगा, तो ये लिखो फलाने शरीर की आत्मा, तो कम से कम वो पता तो चलेगा कौन लिख रहा है। लेकिन बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि कोई बाबा को पत्र में फलाने की आत्मा बाबा को ये कह रही है आदि आदि जो भी। तो आत्मा का पाठ बाबा ने पक्का किया, और ये आत्मा के पाठ से इतना नष्टो मोहा बाबा सहज बन सके जिससे बेफिक्र बादशाह हो गए। निर्मल शांता दादी एक बार अपना अनुभव सुनाती थी कि कैसे ब्रह्मा बाबा बहुत रमणीक भी थे। तो निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुनाती थी, वो तो मधुबन में थी एक दिन, और बाबा की लौकिक युगल यशोदा बॉम्बे में थी। तो मुंबई में उसने शरीर छोड़ा यशोदा ने, तो बाबा ने निर्मल शांता दादी को कहा कि देखो तुम्हारी माँ और मेरी युगल गई, तुम्हारी माँ मेरी युगल मना यशोदा ना। तो ये नहीं कहा कि यशोदा ने शरीर छोड़ा, लेकिन तुम्हारी माँ मेरी युगल, दादी निर्मल शांता ने एक बार बताया था। और बाबा कह करके एकदम मुस्कुरा दिए। तो निर्मल शांता सोच में पड़ गई, क्या बाबा कह रहे, तुम्हारी माँ मेरी युगल मना यशोदा शब्द नहीं कहा। तो बाबा ने जैसे उस बात को भी कितना हल्का कर दिया कि तुम्हारी माँ गुजर गई, ये नहीं कहा, भले तुम्हारी माँ और मेरी युगल ना, ऐसे इस रूप से। और बाबा ने उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया, शरीर तो छोड़ दिया था। तो बाबा ने क्लिक दिया था कि संस्कार वहीं करो बॉम्बे में ही। तो 1962 में यशोदा ने शरीर छोड़ा, मुंबई में बाप रहती थी, सेंटर पर ही रहती थी। तो कहने का भाव है कि कैसे एक धक से ब्रह्मा बाबा बिल्कुल नष्टो मुआ हो गए और बेफिक्र बादशाह हो गए। फिर जब शिव बाबा ने कहा कि अपनी सारी प्रॉपर्टी माताओं बहनों के नाम पर विल कर दो, तो बाबा ने बिल्कुल संकल्प नहीं किया कि मेरे बच्चे, उनके दो बच्चे थे बाबा के, दो बेटे थे, तो ये क्या कहेंगे। तो दूसरा तो छोटा था, नारायण तो छोटा था, लेकिन बड़ा बेटा जो था वो तो सबसे पहला नंबर का बेटा था। उसने तो थोड़ा विरोध भी किया कि पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलनी चाहिए, तो उसने थोड़ा विरोध भी किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा इतने पक्के थे कि भले लौकिक बेटा है, शिव बाबा की आज्ञा मैं मानूंगा या मैं इसकी आज्ञा मानूंगा। तो बाबा ने नहीं दिया, उसने बहुत विरोध किया। तो उसने कहा बाबा अगर मुझे, क्योंकि बाबा बिजनेस खत्म करके आए थे और बिजनेस खत्म करके ये ईश्वरी कार्य शुरू किया था, तो बेटे ने अपना हिस्सा मांगा बड़े ने, तो बाबा ने कहा कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ, ये भगवान का धन है, ये भगवान के कार्य में लगेगा। तो बेटे ने कहा परंतु अब मेरे प्रति भी तो आपका फर्ज है, तो आप कुछ तो शेयर देंगे। तो बाबा ने कहा कि ठीक है दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि जब आप कमा लो तो फिर वापस यज्ञ में देना, समझ गए, भले कमा लो और फिर वापस यज्ञ में देना, क्योंकि ये भगवान की अमानत है, ये मेरी अमानत नहीं है, मेरी चीज नहीं है, ये भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि ये माताओं बहनों के नाम पर ही ये विल करना है। तो सचमुच उसने शायद लिया। मनोहर दादी बहुत कहानियां सुनाती थी, क्योंकि मनोहर दादी बाबा के लौकिक घर के पास रहती थी, तो उनकी जैसे सब बातें पहले से ही मम्मा मनोहर दादी को पता थी, और मनोहर दादी ने यहाँ तक एक बार कहा कि इनका मैं घर देखती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, मैं भगवान को कहती मैं इनके घर में पैदा क्यों नहीं हुई, इनके घर में पैदा क्यों नहीं हुई, और कभी मैं इनके घर में जाऊंगी। जानकी दादी भी कई बार बताती है कि मैं इनके घर में मेरी शादी हुई होती तो जानकी दादी का भी विवाह तो हो गया था, परंतु वो रही नहीं, सीधा अपने माँ बाप के पास काफी पहले से जैसे आ गई थी। तो यानी कहने का भाव है कि शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा बिल्कुल नष्ट मोहा हो गए, इतनी शक्ति शिव बाबा से उनको मिली, परंतु किस आधार पर, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इतना ज्ञान तो था भी नहीं शुरू में। फिर उसके बाद कैसे बाबा बेफिक्र बादशाह बने, तो कैसे बने, हाँ इतना विरोध हुआ, पहले बच्चे का हुआ, चलो और कुछ हुआ, परिवार वालों और भी तो हुए होंगे, उनका भी कितना हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जरा भी फिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरा कार्य है ही नहीं, तो शिव बाबा का कार्य है। फिर शिव बाबा ने आदेश दिया कि सब प्रतिज्ञा करे कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो सब ने प्रतिज्ञा की, जो भी यज्ञ में थे उस समय छोटे बड़े, बाबा का स्कूल चलता था जहां बच्चे पढ़ते थे, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली, और जब प्रतिज्ञा कर ली तो आवाज फैल गया कि ये तो दादा लेखराज ने छोटे छोटे से प्रतिज्ञा करा ली, तो बहुत विरोध हुआ बाबा का कि ऐसे कैसे प्रतिज्ञा करा ली, अभी तो ये छोटे हैं, इनको तो दुनिया का ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ये मैंने नहीं कराया है, ये मेरी शक्ति नहीं थी, ये उस ईश्वर की शक्ति थी, उसने कराया, और मुझे भी तो उसी ने कराया, मुझे भी क्या पता था कि ये प्रतिज्ञा करनी है, मुझे भी शिव बाबा ने कराया, तो जैसे मेरे मुझे कराया, सबको कराया, उनके साथ मैं भी हूं। यानी इतना विरोध होते हुए भी बाबा बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल डरे नहीं, बेफिक्र बादशाह रहे। फिर उसके बाद देखो कैसे बाबा के सामने बातें आई, कितने विघ्न आए, हाँ क्योंकि बाबा से साक्षात्कार होता था सबको, यहाँ तक कि माताएं बाबा को देख करके श्री कृष्ण देखती थी और एकदम बाबा को चिपक पड़ती थी, जिससे चटक पड़ती थी, अब वो माता का पति देखेगा तो क्या करेगा, क्या कहेगा या कोई किसी बाबा की गोद में जाए तो उनके जो घर वाले वो क्या सोचेंगे। लेकिन बाबा तो बिल्कुल ऐसे न्यारे हो जाते थे जैसे बाबा तो अशरीरी हो जाते थे, उनको पता भी नहीं चलता था, और कैसे वो कृष्ण देखती थी और बाबा के सामने वो जैसे बाबा के पास ही पहुंच जाती थी, तो बाबा को तो बहुत सामना करना पड़ा कि ये जादूगर है, अपने इसके अंदर कोई जादू है और अपने आप को कृष्ण कहलाता है और ये सब इनकी गोपियां हैं और ऐसे ऐसे। बाबा कहते थे मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बस जो शिव बाबा ने मुझे कहा कि आत्मा अपने को समझो, बस मैं वही समझ रहा हूँ, बाकी ये तो मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और फिर यहाँ तक कलंक लगे कि ये अपने आप को कृष्ण कहलाता है और इसकी अभी उस समय 300-400 बहने माताएं थी, ये इनकी अभी 400 गोपियां हो गई है और इनको तो 16108 रानियां चाहिए, जैसे श्री कृष्ण को 16108 पटरानियां ऐसे बताते हैं, तो अभी तक 400 ही मिली है इसको, और ये कृष्ण कहलाता है अपने आप को और 400 रानियां इनको मिली है। और बाबा कहे देखो वाट वेंदे बांबण फाथो, बाबा मुरली में ये वाक्य कहते हैं, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, सिंधी है ये, माना रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया और इनको कितनी गालियां खानी पड़ी। और शिव बाबा की प्रवेशता से पहले तो बाबा का बहुत सम्मान होता था, समाज में बाबा का बहुत नाम था, क्योंकि बाबा बहुत बड़े दानी थे, यहाँ तक कि गरीब माता पिता बाबा के पास आते थे कि बेटी की शादी करनी है, तो दहेज के लिए बाबा से धन लेके जाते थे, नहीं, क्योंकि बाबा तो धनी तो थे ही, तो इसीलिए बाबा माँ बाप को धन देते थे ताकि बेटी की शादी कराओ लौकिक जीवन में। और फिर तो देखो कैसे बाबा में इतना परिवर्तन आ गया, पर ये जो कलंक लगे तो बाबा शिव बाबा को कहते थे, बाबा ये क्या, पहले तो इनको कितना सम्मान मिलता था, समाज में कितना बड़ा नाम था, लखीराज बाबू कहते थे बाबा को, हाँ लखीराज बाबू आए, लखीराज बाबू आए, इतना नाम था। और पीछे तो लोग इतना मानो ग्लानी करने लगे, तो शिव बाबा क्या कहते थे, मुरलियों में आता है ना, शिव बाबा क्या कहते थे ब्रह्मा बाबा को, कोई बात नहीं बच्चे, तुमने भी भक्ति मार्ग मेरी बहुत ग्लानी की है। क्या ग्लानी की हम लोगों ने, सर्वव्यापी कह करके ग्लानी की ना, शिव बाबा की ग्लानी तो की ना, पत्थर भीतर में, कण कण में, कुत्ते बिल्ले में, तो ये तो बहुत बड़ी ग्लानी है, कहाँ ऊंचे से ऊंचा भगवान और कहाँ उनको जगह दे दी, तो ये तो बहुत ग्लानी की। इसलिए बच्चे तुमने भी बहुत ग्लानी की, पर देखो बाबा तो अपकारी पर भी उपकार करते हैं, तो इसलिए बच्चे कोई बात नहीं, ये ग्लानी नहीं है, ये तो अज्ञान है इनका। तो इसीलिए बाबा तो ब्रह्मा बाबा ये शिव बाबा से सुनते थे, क्योंकि मुरली चलती थी तो ब्रह्मा बाबा भी तो सुनते थे ना, नंबर वन स्टूडेंट थे ब्रह्मा बाबा, ने कभी मुरली मिस नहीं की, की होगी कभी मुरली मिस, कैसे खुद कैसे मुरली मिस करेंगे, क्योंकि शिव बाबा उनके मुख से बोलते थे, तो खुद कैसे मुरली मिस करेंगे, क्योंकि जो शिवा बोलते वो खुद भी तो सुनते थे। पहले बाबा अपने लौकिक घर में गीता सुनाते थे, रोज सत्संग करते थे, खुद सुनाते थे गीता, और जब देखा ये सत्संग बढ़ रहा है तो गीता के नाम पर ही वो आते थे, भाई गीता का सत्संग है, गीता का, तो बाबा ने 500 गीताएं, यूपी में गोरखपुर है तो गोरखपुर में गीता प्रेस है, वहां से 500 गीताएं मंगाई कि इतने सारे वृद्धि को पा रहे हैं, एक एक को गीता हाथ में देंगे और गीता का अध्ययन करेंगे। लेकिन गीता पुस्तक अभी हाथ में ही थी, अशिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी, अशिव बाबा बोलना शुरू कर देते थे, तो बाबा को लगता था ये कौन बोल रहा है, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो पता है मेरी बुद्धि चल रही है, मुझे क्या बोलना है, क्या इसके पीछे सुनाना है, अब कोई और मेरे द्वारा बोल के चला जाए तो हमको तो पता ही नहीं चाहिए कौन बोल के गया। तो मानो बाबा के सामने ये बातें आई और जैसे जैसे निश्चय बैठता गया, क्योंकि समझ पहले कुछ नहीं थी, जो ध्यान में जाती थी बहने वो बाबा को आके बताती थी कि कैसे ये शिव बाबा की प्रवेशता है आपके अंदर, क्योंकि वो ध्यान में देखती थी शिव बाबा प्रवेश हुए। और शुरू में तो पहली बार तो शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने खुद देखा कैसे शिव बाबा की उनमें प्रवेशता हुई, पर ये प्रवेशता का मतलब क्या ये भी बाबा ने समझा नहीं था, शिव बाबा कौन है ये भी पता नहीं था, मानो ये धीरे 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 सारे राज खुले और कैसे बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की। तो शुरू में इतने कलंक लगे, परंतु बाबा तो बेफिक्र बादशाह थे। बाबा कई बार और भी एक प्रसंग बाबा बताते हैं कि कैसे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, यहाँ मधुबन में ही थे बाबा, तो इंडिया चाइना का युद्ध हुआ और बहुत सारा भारत का हिस्सा चाइना ने हड़प लिया, मानो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत भारत के भी सैनिक मारे गए और फिर तो मानो चाइना ने वो युद्ध जीता, हमारी हमारी जमीन ले ली, बहुत काफी जमीन भारत की उनके पास है, अभी तक उसका झगड़ा चलता ही रहता है, जैसे पाकिस्तान का ना वैसे चाइना के साथ भी है। तो बाबा ने एक बार मुरली में कह दिया कि क्यों खाम खा इतना उनके पीछे पड़े हैं, चाइना के पीछे, अब परंतु भले चलो लिया तो कोई बात नहीं, पर एक दिन आएगा बच्चे ये सारा भारत विश्व भारत कहलाएगा और तुम सारे विश्व के मालिक होंगे, अभी थोड़ा लिया तो लेने दो। अब ये जैसे जो वाणी चली ना, अब ये भी प्रिंट तो हो गई और किसी सेंटर पर पहुंच गई, तो कोई गवर्नमेंट का CID ने ये पढ़ लिया कि ये कौन है इनका दादा लेखराज और इसने जिसकी ये वाणी है कि भले लेने दो कोई बात नहीं, तो कहीं ये चाइना का एजेंट तो नहीं है, चाइना का एजेंट, क्योंकि उस समय बहुत कुछ इंक्वायरीज होती थी। तो तो मधुबन में वो आ गई, ये क्या नाम है, वो सीआईडी पहुंच गए कि हमको बाबा से मिलना है। अभी जो बहने थी वो तो घबराए कि बाबा से मिलना है, सीआईडी, ये गवर्नमेंट का आदमी आया, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो बाबा ने कहा बुलाओ बच्ची, कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा के अंदर में तो कुछ भी नहीं था। तो जब आए तो पहले तो वो मुरली का जो शब्द थे वो बाबा को दिखाया, ये आपने कहा है, ये आपके ये शब्द हैं। तो बाबा ने कहा कि, फिर बाबा तो समझ गए, तो बाबा ने कहा देखो ये मैंने नहीं कहा है। तो किसने कहा है? ये ऊपर वाला है ना, शिव बाबा, क्योंकि मैंने तो बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। फिर जब ये बातें हुई तो फिर बाबा ने कहा कि देखो वो ऊपर वाला है ना, शिव परमात्मा, वो इनके तन में आता है। और वो उसने कहा, तो कहा वो कहाँ है, उनको क्या पता क्या। तो कहा वो तो चला गया कह करके, वो तो कह करके चला गया। तो अभी वो बिचारे क्या समझा तो नहीं उन्होंने कि वो कह करके कहाँ चला गया। तो फिर कहा कि लेकिन आप उनको कहो कि ऐसे नहीं कहे, मतलब ऐसे कुछ बातें चली, चर्चा चली। तो बाबा ने कहा ठीक है, अगली बार जब वो आएगा ना तो अब उनको कहेंगे कि बाबा कि ऐसे मत कहो। और इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। तो पहले तो बाबा को देख करके ही वो घबरा रहे थे कि बाबा को बताएं कैसे, इतनी महान हस्ती, इतना ऊंचा, यानी बाबा की पर्सनालिटी भी थी और बाबा से वो पवित्रता की झलक, वो तो सब अनुभव होती थी, इतनी महानता का अनुभव होता था, भले उनको ज्ञान नहीं था लेकिन बाबा के सामने बात भी कैसे करें। तो बाबा ने जब ये बात कही तो उसने कहा ठीक है बाबा, अगली बार जब वो आए ना तो आप उनको कहना कि प्लीज आगे ऐसे नहीं कहे। और बात वहीं की वहीं पूरी हो गई। यानी कितनी बड़ी बात बच्चों ने समझ ली कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये क्या करेंगे, कहीं पकड़ के न ले जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, होता है ना बहुत कुछ होता है। और फट और इतना सहज रूप से वो बच्चे बेचारे बहुत ही जैसे इतने झुक गए बाबा के आगे और चले गए। और फिर तो अपनी रिपोर्ट दी होगी उन्होंने, जो भी गवर्नमेंट में रिपोर्ट दी कि बात ऐसी कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत महान कार्य करे, फिर कार्य का वर्णन किया। यानी कहने का भाव है कि बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह थे। जब कराची से यहाँ भारत में आए, माउंट आबू में आए, तो बेगरी पार्ट चला, इतना जबरदस्त बेगरी पार्ट जिसको कहते हैं कि दिन को खाना है तो रात को क्या खाएं वो पता नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि इस यज्ञ में 14 साल बाबा का धन चला और जो थोड़ा बहुत कुछ लेकर के आए थे वो सब यूज हो गया। तो जब भारत में आए तो कहां से आएगा, मकान भी किराए पर लिया, जो ब्रिज कोठी पहला मकान भारत में लिया, तो अभी कहां से आए, खाने को नहीं। जो भोजन बनाने वाली बहन होती थी वो बाबा को कहती थी बाबा कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ नहीं है। सवेरे 10 बजे 9 बजे बाबा को आकर के कहा, पहले तो नाश्ता क्या बनाए, तो बाबा कहते थे नाश्ता कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्या करेंगे, सब चलेंगे पहाड़ों पर। तो उस समय गर्मी के दिन थे, तो अभी जैसे है ना माउंट आबू में आम बहुत बहुत आम के पेड़, तो आम और ये दूसरा करौंदे मालूम है ना, हाँ काले काले करौंदे, और तीसरा ये जुलाई महीने में जामुन। तो जामुन, करौंदे, आम, ये बहुत होते थे माउंट आबू में, इतने ही होते थे कि रास्ते पर जाओ और वहां सब खा सकते हो निकाल करके। तो बाबा कहते थे बच्चे चलो पहाड़ों पर चलेंगे, बच्चों को नहीं मालूम कि यज्ञ में पैसा नहीं है, चलो बच्चे पहाड़ों पर चलेंगे और करौंदे खाएंगे, आम खाएंगे, ये खाएंगे। तो सब बच्चे बाबा के पीछे तैयार, मम्मा भी तैयार, और बाबा मम्मा और सब बच्चे सवेरे सवेरे जाकर के पिकनिक करके आ जाते थे और पेट भर गया, नाश्ते की जरूरत ही नहीं। फिर 9 बजेंगे, 9:30 के अंदर कि बाबा अभी क्या करें, अभी दिन का भोजन बनाना है। तो बाबा कहते थे बच्चे थोड़ा धीरज धरो, देखो कोई बाबा का लाल किसी को टच करेगा बाबा, और कैसे बाबा भेजेगा? जिसको अपना जीवन दिया है तो वो हमको भूखा थोड़ी रखेगा। जैसे आज भी बाबा ने कहा है कि अपना किसको जीवन दिया है, बाबा को दिया है, बाबा के ऊपर न्योछावर हुए तो वो भूखा थोड़ी रखेगा, तो बाबा जरूर भेजेगा। सचमुच वंडर होता था कि कैसे 10:30 बजे पोस्ट आती थी, लेटर्स आते थे। अभी कहां से एक लेटर खोला, लिफाफा खोला, उसमें पैसे पड़े हैं, किसने भेजा कोई नाम नहीं। दूसरा लेटर खोला, पैसे पड़े हैं, और पैसे मिल गए, और बाबा कहते थे जो निमित बहन थी कि जाओ गेहूं आटा लेकर आओ, दाल लेकर आओ, चावल लेके आओ, सब्जी लेके आओ, और हो गया दिन का भोजन। फिर शाम को रात का भोजन। तो फिर शाम को भी पोस्ट आती थी, पर कहां से पैसा आ रहा है कुछ पता नहीं। यहां तक कि मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती थी, मतलब यज्ञ का शुरू में, तो माउंट आबू में जब रहे तो रोज सवेरे 3 बजे लाल लाइट जलाते थे और सब योग करते थे। तो सामने कोई रहता था, वो परिवार रहता था, तो रोज वो माता सवेरे उठती थी और देखती थी ये जैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, 3 बजे उठ करके लाल लाइट जल रही है और वहां सफेद सफेद वस्त्रधारी बहने और ऐसे मेडिटेशन कर रही है। तो अब रोज उसको देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था कि तो कितनी देवियां हैं, फरिश्ता है। तो अपने पति को कहा कि जाके देख करके तो आओ, ये कौन है, ये देवियां कौन है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा वाइब्रेशन आता है इनसे। तो वो आया, बाबा से मिला, और बाबा से मिल करके पूछा सब, तो बस जैसे गया बाबा को कुछ नहीं बताया, वहां एक लिफाफा छोड़ करके चला गया। तो बाद में एक बहन ने देखा, बाबा ये तो छोड़ के गया है, तो बाबा ने कहा ये शिव बाबा ने उनको भेजा है, शिव बाबा ने उनको भेजा है कि जाओ बच्चों को देकर के। क्योंकि उसने खुद ही कहा कि मुझे जैसे वाइब्रेशंस आए, जैसे परमात्मा की टचिंग आई कि इनको कुछ न कुछ आवश्यक होगा। वो माता बाद में आकर के बताने आई कि हमको लगा कि कुछ इनको आवश्यक होगा, ये लोग पता नहीं कहाँ ये आए हैं, इनको कुछ मिलता होगा नहीं मिलता होगा। तो अपने पति को कहा कि वहां कुछ देकर आना। यानी एक छोटा सा मिसाल है कि बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह रहे। बाबा की मुरलियों में बहुत कुछ आता है। कई बार बाबा को पत्र लिखते थे, फलाना सेंटर पर ये प्रॉब्लम, फलाने सेंटर पर ये प्रॉब्लम, ये बहन ने ऐसे किया, ये बच्ची ने ऐसे किया। अब बाबा चलो मुरली में सुनाते थे, फिर बाबा कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। एक मुरली में आता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी, गोथरी माना थैली। तो गुड़ कितना मीठा है ये जब तक कोई खाए खाए सबसे पहले किसको मिलता है, थैली को, जिस थैली में गुड़ डालते हैं। तो कितना मीठा ये गुड़ है, वो गुड़ जाने और उसकी थैली जाने जब तक कोई खाए खाए और पता चले। तो बाबा कहते थे कि देखो बच्चों के समाचार आते हैं कि कोई कहाँ विघ्न आया, सरकार का विघ्न आया, मकान मालिक का विघ्न आया, कुछ ऐसी बात आई, तो बाबा को तो समाचार सब मिलते हैं। तो बाबा की तो कभी कभी नींद ही फिट जाती है, नींद ही उड़ जाती है, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था। फिर मैं सोचता हूँ ये मेरा कार्य थोड़ी है, ये किसका कार्य है, ये तो भगवान का कार्य है, तो शिव बाबा का कार्य है। तो फिर मैं शिव बाबा को कहता हूँ कि बाबा ये तो आपका ही कार्य है, आपको ही संवारना है, आपको ही संभालना है, आपको ही ये ठीक करना है। तो मैं तो केवल उस बच्चे को केवल योग की शक्ति दे सकता हूँ, सकाश दे सकता हूँ, बाकी कार्य तो बाबा का है। और फिर बाबा कैसे रात को फिर सो जाते थे। यानी कहने का भाव है कि वैसे नहीं कि बाबा को ख्याल नहीं चलता था, लेकिन कैसे पुरुषार्थ अपना करते थे बाबा, कोई संपूर्ण थोड़ी थे, लेकिन अपना पुरुषार्थ करते थे, और पुरुषार्थ करते करते कैसे बेफिक्र बादशाह बनते गए। जो कितनी भी बाबा के सामने बातें आई, फिर ड्रामा का ज्ञान बाबा को मिला, तो पहले आत्मा का ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान, फिर ड्रामा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान। जो बाबा को इतना नशा रहता था, मैं ये बनने वाला हूँ। हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे और लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट सामने रहता था, अभी भी वही ट्रांसलाइट है। तो बाबा हमेशा मुरली चलाते समय ट्रांसलाइट जलाते थे, तो बाबा उनको देख करके कितना खुश होते थे। मुरली में हम सुनते ना, पता चलता है कि मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। तो बाबा कई बार क्या करते, खगिया मारते थे। सिंधी में खगी मारना मालूम है किसको कहते? ऐसे 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 होता है ना, ये जो कंधा है वो ऊपर नीचे हिलता रहता है, इसको कहते खगिया मारना। तो बाबा इतने इतने नशे में रहते थे कि मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये वर्ल्ड प्रिंस बनूंगा। क्योंकि शिव बाबा में नशा था, पर अपने लक्ष्य का भी पूरा नशा था। तो ये छोटी छोटी बातें जो अभी आ रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको बनना क्या है। ऊंचे से ऊंचे बाप के द्वारा हमें कितना ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य मिला है, तो बच्चे घबराओ नहीं, एक दिन सारा विश्व तुम्हारे हाथ में आने वाला है। तो ये जो छोटी छोटी बातें आती है, घबराओ नहीं, ये बाबा बच्चों को बार बार समझाते रहते थे। क्योंकि बच्चे थोड़े थोड़े बात में घबरा जाते थे, पत्र लिखते थे बाबा को, बाबा ऐसे हुआ, बाबा ऐसे हुआ, बाबा ऐसे हुआ, तो बाबा उनको लिखते थे। इसलिए पत्र लिखना ये बाबा का बहुत बड़ा पाठ होता था। इसलिए हम लोग बताते ना, बाबा की झोपड़ी में बाबा कैसे पत्र लिखते थे बच्चों को, और बच्चों से मिलते थे। अलग से मिलना होता था तो बाबा झोपड़ी में दिन के समय मिलते थे, और कैसे बाबा की बेहद विशाल बुद्धि थी। हर एक को बाबा बच्चे 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 कैसे पिता अपने बच्चों के सामने बैठे, इतने हद तक के बच्चे बच्चे बाबा की बुद्धि में था या मुख पर था। आप बाबा की टेप सुनो, सुनिए बाबा की टेप, किसने नहीं सुनी है बाबा की टेप? आवाज बाबा का नहीं सुना है? अच्छा, आवाज ही नहीं सुना है बाबा का? टेप्स तो बहुत मिलती है बाबा की आवाज की। मम्मा की आवाज सुनी है? जिसने मम्मा की आवाज सुनी है तो अच्छा, मम्मा की सुनी है टेप, माना मम्मा की आवाज। और जिसने नहीं सुनी है मम्मा की आवाज, अच्छा वो भी है। तो मम्मा के दिन तो देखेंगे, मम्मा की आवाज आपको टेप में थोड़ा सुनाएंगे, लेकिन बाबा की भी आवाज है टेप में, बहुत टेप्स है। बाबा के सामने स्कूल में टेप भरते थे, पर बाबा इसे इतना इनोसेंट, कई बार अभी तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी इतने होशियार हो गए हैं, पर ब्रह्मा बाबा इतने महान, इतनी ऊंची विचार वाले, लेकिन फिर भी इतने इनोसेंट, जैसे छोटे बच्चे बन जाते थे। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ, माना वो टेप मशीन की बात सुनाऊं। तो जब नई नई टेप आई, पहली बार बाबा के सामने आई, तो बाबा को कहा कि बाबा इसमें जो आप आवाज भरेंगे ना, वो इसमें भर जाएगा, फिर हम ये आवाज फिर रिवाइंड करके फिर सुन सकते, आपकी आवाज हम सुन सकेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा ने मुरली चलाई और वो आवाज भर गई, और फिर रिवाइंड करके बाबा ने आवाज सुनी अपनी आवाज। तो कहा अच्छा, ये बच्चा बहुत सर्विसेबल बनेगा। कौन सा बच्चा? टेप मशीन बच्चा, बच्चा है वो भी बच्चा। ये बच्चा बहुत सर्विसेबल बनेगा, क्योंकि ये बाबा के माँ वाक्य हूबहू सुनाएगा। बच्चे अगर किसी को सुनाएंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, भूल जाते, अपना भी मिक्स कर देंगे कुछ ना कुछ, सारा थोड़ी कोई 100% जो बाबा के शब्द है वही सुनाएंगे। लेकिन ये बच्चा 100% बिल्कुल अपनी मनमत पर नहीं चलेगा, सब बाबा की भाषा के ही शब्द सुनाएगा। तो फिर बाबा को बहुत पसंद आया, तो बाबा ने तो फिर आश्चर्य खाया, अच्छा ये आवाज में फिर से सुन सकते हैं। तो फिर बाबा ने विश्व रतन दादा को कहा कि जाओ ये टेप मशीन ले जाओ, और बाबा के जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहां पर सबको ये टेप मशीन सुनाओ, बाबा की आवाज सुनाओ। अरे सब इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, टेप मशीन मंगाने लगे। अभी नई नई बड़े बड़े स्पूल्स होते थे, वो टेप स्पूल्स होते थे, उसने देखा ना टीवी, वो देखा ना स्लाइड में, वो शील इंदिरा दादी वो उनके भाई रहते थे सिंगापुर में रहते थे लौकिक भाई, तो उसने भी एक भेजा था, मतलब बाबा के आगे रखे थे क्योंकि उस समय तो वो बड़ी बड़ी टेपी थी। तो एक बार बड़ी दीदी ने बाबा के साथ खेल किया, देखो कैसे बाबा इतने ऊंचे पर कितने इनोसेंट थे, तो कैसे खेल किया बाबा ने दादी दीदी बड़ी दीदी ने क्या किया, बाबा के यहाँ ये ना ललाट पर एक सिक्का रखा, जैसे एक रुपए का सिक्का लगाते ना, तो जोर से जैसे दबाया, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अभी क्या करना है, तो दीदी ने कहा अभी ना अभी ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो अगर गुस्सा नहीं आएगा ना तो ये अपने आप निकल आएगा, तो ऐसे ऐसे किया तो निकल आया, मना गुस्सा नहीं आता। तो फिर दूसरा, फिर उसने कहा अभी अभी बाबा फिर दूसरे पर लग, मना बाबा पर ही किया और बाबा पर ऐसे करके, तो क्या करके जोर से दबा के निकाल दिया, निकाल दिया। तो फिर दीदी ने कहा अभी बाबा अभी निकालो, तो बाबा ने ऐसे किया पर निकला ही नहीं, क्योंकि वो तो निकाल दिया था ना, पर ऐसे लगता है ना जैसे किसी को दबा के रखो तो लगेगा कि अभी तक वहां है, तो निकला ही नहीं। तो बाबा तो कहा कि कहाँ गया बच्चे, कहाँ गया, तो कहा कि बाबा आपकी अभी तक लगा हुआ है, तो बाबा ने देखा अभी तो है ही नहीं तो बच्ची कहाँ गया, तो बाबा ने कहा कि देखो आप फेल हो गए, दीदी ने बाबा को कहा, तो बाबा को ऐसे हंसाते थे। एक बार बड़ी दीदी थी वो बहुत बाबा को हंसाती थी, दीदी ने बाबा को कहा कि देखो बाबा ये ना अगर कोई गूंगा है तो वो पानी कैसे मांगेगा, पानी गूंगा है बोल नहीं सकता है तो कैसे मांगेगा, ऐसे ऐसे ना कहेगा। अच्छा कोई अंधा है तो वो कैंची कैसे मांगेगा, कैसे मांगेगा तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे मांगेगा, तो दीदी ने कहा कि बाबा क्यों बोल सकता था ना तो ऐसे ऐसे क्यों करेगा, तो बच्ची ये क्यों नहीं बताया कि वो अंधा था पर गूंगा नहीं था, ये क्यों नहीं बताया यानी अंधा था तो बताना है कि वे गूंगा नहीं था, तो बच्ची ये तो बताया नहीं, यानी हंसी जैसे बाबा को हंसाते थे, बहुत हंसाते थे बाबा को, तो बड़े रमणीक भी थे। तो एक बार फिर दूसरी कोई बहन आई तो बाबा ने उसके साथ खेल किया, देखो बच्ची गूंगा कैसे पानी मांगेगा, फिर अंधा कैसे कैंची मांगेगा, तो उसने भी ऐसे ही किया, तो बाबा ने कहा देखा बच्ची इसने भी वही भूल कर दी जो मैंने भूल की, मना बिल्कुल जैसे इतने निरहंकारी बाबा जो बात मत पूछो, बच्चों के साथ इतना भोला बन जाते थे। बाबा रोज चिड़ियाओं को खिलाते थे, एक बुलबुल आती थी बाबा के पास यहाँ झोपड़ी में, जब दिन के समय बाबा को कुछ चने खिलाते थे या कुछ ऐसे खिलाते थे, जूस वगैरह बाबा लेते थे, तो एक बुलबुल आई तो बाबा ने उसको चना दिया और वो जैसे लेके उड़ गई, तो रोज आती थी वो, रोज आती थी, तो रोज बाबा उनको चना देते थे और कभी कभी तो अलग रखते थे कि बच्ची आएगी, बच्ची आएगी, बुलबुल भी बाबा के लिए बच्ची थी। तो एक दिन नहीं आई तो बाबा ने एक बहन को कहा वो बच्ची नहीं आई है, अब उसमें बहन को क्या पता कौन सी बच्ची, तो बाबा ने कहा कौन सी बच्ची, बच्ची वो जो रोज आती है बच्ची, वो आई नहीं आज, अब उसको क्या मालूम कौन सी बच्ची रोज आती है और आई नहीं, तो बच्ची वो बुलबुल, तो वो बच्ची बच्ची कह रहे हैं। फिर बाबा बंदर को भी बच्चा बच्चा कहते थे, आओ बच्चे, तो बंदर भी आ जाएंगे तो बंदर को भी दे देंगे, क्योंकि बंदर तो बहुत आते थे ना यहाँ, तो बंदर को भी बुलाएंगे, तो बंदर ये बड़े प्यार से जाता था बाबा से, बाबा के हाथ से लेता था वो, और बहने तो घबरा जाए पर बाबा उनको बड़े प्यार से देते थे, बच्चे बच्चे कहते थे, मानो एक बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा, कैसे बाबा की दृष्टि पूरी बदल गई, कहां वो लौकिक परिवार और कहां ये बेहद परिवार हो गया, ताकि उनके लौकिक बच्चों को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई हम हम ही तो बच्चे हैं, पर बाबा ने सबको समझा मेरे तो सब बेहद के बच्चे हैं। इसलिए निर्मल शांता दादी जो बाबा की बेटी थी, तो बाबा हमेशा वो कहती थी 3 in 1, बड़ा नशा था उनको। आप तो कहेंगे मेरा पारलौकिक पिता अलग, अलौकिक पिता अलग और लौकिक अलग, मेरा 3 in 1, क्योंकि पारलौकिक, लौकिक और अलौकिक तीनों ही एक में देखा, तो 3 in 1 कहती थी। नहीं, वो पहले आती थी, वो रेडियो भी आएगा, टेप मशीन भी आएगी, घड़ी भी आएगी, 3 in 1, तीन चीजें एक ही इंस्ट्रूमेंट में, तो वो अपने आप मतलब इस प्रकार से कहती थी। परंतु बाबा ने कभी ये दिखाया नहीं कि ये मेरी बेटी और ये मेरी बेटी नहीं, क्योंकि बेहद की बुद्धि थी। और कभी कभी बाबा कहते ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा मुरली में कहते थे। हाँ, ये जो निर्मल शांता दादी की जो बात में बता रहे थे ना, बाबा की लौकिक युगल ने शरीर छोड़ा, तो उस दिन बाबा ने मुरली में चलाया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तो बाबा ने कहा निर्मल शांता दादी को, देखो तुम्हारी अम्मा मेरी बीबी, तो अम्मा तो हलवा खाओ। वास्तव में ये क्या हुआ, तो जब बाबा ने एक दिन मुरली में कहा, तो एक बहन ने सचमुच ऐसे कर लिया। एक बहन थी, सेंटर पर थी, तो उसकी उसको न्यूज मिली कि उनकी माँ ने शरीर छोड़ा, तो जाकर के हलवा पकाया और खाया और बाबा को कहा कि बाबा आपने ही तो मुरली में कहा ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तो बाबा सचमुच मैंने हलवा पकाया। तो बाबा ने कहा मुट्ठी ऐसे थोड़ी करना होता है, ये तो कहने में आता है कि कोई भी प्रकार का दुख मत करो। तो तुमने सचमुच खा लिया क्या? अच्छा, भोग लगाया? तो कहा भोग तो लगाया ही नहीं। तो वो कई बार अभी भी आकर के कभी अपना न्यूज वो सुनाती है कैसे बाबा के साथ उनका ये हुआ। तो बाबा ने उनको समझाया कि इसका मतलब क्या है, कि हाँ अंतिम संस्कार हो जाए फिर भले भोग लगाओ, फिर भले पकाओ ना हलवा। माँ तो साथ में नहीं थी, वो सेंटर पर रहती थी, वो दूसरे शहर में थी। तब आपको मालूम है जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा भोग लगता है? हलवा का भोग लगता है। यहाँ मधुबन में भी रोज कुछ न कुछ होता ही था, आजकल थोड़ा कम है, नहीं तो कहाँ भी किसी ने शरीर छोड़ा, शांतिवन में शरीर छोड़ा, कहाँ छोड़ा, जाओ मधुबन में ले जाओ। तो यहाँ ही अंतिम संस्कार करते थे। कई तो ऐसे भी थे जो समझते थे बस शरीर मधुबन में छोड़ू और जगह नहीं छोड़ू तो बीमार होंगे, सीधा यहाँ आ जाएंगे, और भाई हमको मधुबन में शरीर छोड़ना है, मधुबन में शरीर छोड़ना है। कितने शांतिवन में बाबा से मिलने के लिए आते और देखो तो शरीर छोड़ दिया। तो देखो, तो एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा, क्योंकि नीचे शांतिवन में शरीर छोड़ा, अब शरीर छोड़ा तो ऊपर ही ले आएंगे, क्योंकि मॉर्चरी यहाँ है, हॉस्पिटल में मॉर्चरी है, तो यहाँ बॉडी को रखेंगे जब तक उनके रिश्तेदार आए, और फिर यहाँ ही अंतिम संस्कार होता था। लेकिन कम से कम शांतिवन का जो कारोबार है वो तो बंद नहीं होता था। तो कोई शरीर छोड़े तो सब कारोबार बंद हो जाए, खाना पीना बंद, सब बंद हो जाए। तो मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा था कि कम से कम अभी कोई शरीर छोड़ता है तो कम से कम यहाँ कारोबार किचन का बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शरीर छोड़ा तुरंत उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ की मॉर्चरी में रखते हैं, यानी जब तक उनके रिश्तेदार आए, और फिर यहाँ माउंट आबू में संस्कार करते थे। परंतु ये जरूर है कि बाबा कहते हैं कि रोना कभी नहीं है, कुछ भी हो जाए इन आंखों से कभी दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको आत्मा चली गई, आत्मा उड़ गई, हिसाब किताब इतना ही था। तो इसीलिए कभी भी किसी भी प्रकार का दुख मत करो, वो तब होगा जब हम सचमुच उनको आत्मा रूप में समझेंगे। बाबा का ज्ञान हमें इतना प्राप्त है कि अगर कोई कुछ कहे भी तो भी बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि हो तो निश्चय बुद्धि की विजय जरूर होगी, इससे हम सहज रूप से बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। और जो बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं हम उसमें 100% निश्चय रखें। तब बेफिक्र बादशाह बनेंगे। अगर हम संपूर्ण निश्चय नहीं रखते, सोचते बाबा कहते तो हैं, पता नहीं पता नहीं, ये पता नहीं पता नहीं का तो पता कट जाएगा। हा? ये समझ लो कौन बोल रहा है, सत्य बाप बोल रहा है। कई कहते कैसे निश्चय हो कि सतयुग आएगा, कैसे ये निश्चय हो, तो बाबा कहते चलो अच्छा नहीं भी आया, कोई कहे तो नहीं भी आया, अभी कौन सा आपको दुख है, है कोई दुख। कई बार बच्चे बाबा से पूछते थे कि बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा बहुत हंसी में उत्तर देते थे, बच्चे क्या आप बाबा को भेजना चाहते हो, भेजना चाहते हो किसको, शिव बाबा को भेजना चाहते हो कि बाबा तुम चले जाओ, कब विनाश होगा माना, पढ़ाई पूरी होगी बाबा चला जाएगा तो बाबा को भेजना चाहते हो। या बच्चे कई बार पूछते बाबा विनाश की डेट बताओ, तो बाबा कहते थे कि बच्चे विनाश की डेट पूछना माना डर लगता है। अब डेट कॉन्शियस क्यों बनते हो, आप तो सोल कॉन्शियस बनो। डेट कॉन्शियस बनेंगे और समझो उस समय विनाश नहीं हुआ, कहेंगे विनाश तो हुआ ही नहीं, परंतु संपूर्ण बने हो, संपन्न बने हो। तो देखो ब्रह्मा बाबा ने चाहे जो भी शिव बाबा ने कहा, एक सेकंड में निश्चय बुद्धि बनकर उनको स्वीकार किया और बाबा ने यही कहा मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। तो देखो 33 वर्षों में 69 में बाबा व्यक्त हुए और संपूर्ण बनकर अव्यक्त हुए, तो 36 में बाबा क्या थे, परिवार गृहस्थी धंधा इतना कारोबार, राजाओं महाराजाओं के साथ इतना कुछ उनका फैला हुआ, और शिव बाबा की प्रवेशता हुई एक धक से समर्पित हुए और 33 वर्षों में संपूर्ण बन गए। अंतिम दिन भी बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह थे, आपको मालूम होगा कि बाबा को सुबह सुबह छाती में पेन हुआ, 18 जनवरी 1969 को बाबा को पेन हुआ और ठंडी बहुत थी, बहुत ठंडी थी माउंट आबू, अभी तो कुछ भी ठंडी नहीं है उस समय की भेंट में। तो बाबा सवेरे तो उठे लेकिन ठंडी बहुत थी, और सवेरे सवेरे दादी जी उनके पास गए और बाबा को कहा बाबा कि बाबा को पेन था, तो बाबा डॉक्टर को बुलाएं, बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि बाबा संपन्न हो रहे थे, संपूर्ण हो रहे थे, तो कोई क्योंकि अपने बीके डॉक्टर्स तो थे ही नहीं, ये तो सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर बुलाते थे या यहाँ एक प्राइवेट डॉक्टर था माउंट आबू में वो बाबा को देखने आता था, तो बाबा डॉक्टर को बुलाए, बाबा ने कहा नहीं। तो फिर दादी जी उस समय थे मधुबन में, बड़ी दीदी नहीं थी, बड़ी दीदी गए हुए थे इलाहाबाद, तो दादी जी को बाबा ने रोका था, वो बॉम्बे में रहती थी और बाबा ने उनको रोका था, मधुबन आई थी, तो दादी ने कहा बाबा आज आप मत निकले, बाहर मत आए, क्योंकि अंदर तो बाबा को गर्म रखते थे, वो कांगड़ी जलाते थे, ये हीटर वीटर कुछ नहीं थे, कांगड़ी होती ना क्या कहते वो कोयला जैसे कांगड़ी बोलते ना, वो सिगड़ी जैसे वो बाबा के कमरे में जलाते थे ताकि कमरा गर्म रहे। तो बाबा आप आज बाहर मत निकलें, तो बाबा ने कहा ठीक है। तो फिर दादी खुद गई, अमृत वेला योग कराया, फिर 6:30 भी ठंडी बहुत थी, अंधेरा बहुत था, तो बाबा को फिर से कहा कि बाबा आज आप मुरली मत चलाएं, मैं बाबा की तरफ से जाकर के सबको कुछ सुना दूंगी। तो बाबा ने कहा ठीक है, क्योंकि पेन बहुत था और अटैक आ चुका होगा, क्योंकि बाबा ने एक वर्णन कुछ नहीं किया पर बिल्कुल शांत हो गए। फिर जब 9:00 थोड़ी धूप निकली तो उसके बाद बाबा बाहर आए और सीधा ऑफिस में गए, ईशु दादी की ऑफिस वहां जो है ना, तो वहां गए और ईशु दादी को कहा कि बच्ची मैं ठीक हूं और जो भी आज पत्र आए हैं, क्योंकि 10:30 करीब पत्र आते थे, जो भी पत्र आए हैं बाबा सबका जवाब देंगे। तो शनिवार का दिन था तो बाबा ने सब पत्रों का जवाब दिया और बाबा चले गए कमरे में। नहीं, फिर बाबा ने दादी जी को बुलाया और दादी जी को लेकर बाबा ने सारा घुमाया, एक एक स्टोर रूम दिखाया बाबा ने। बच्चे यहाँ अनाज रखते हैं, यहाँ कपड़ा रखते हैं, यहाँ बर्तन रखते हैं, क्योंकि यज्ञ तो वो बहुत बड़ा तो नहीं था, उस समय छोटा ही था, लेकिन दादी जी तो रहती नहीं थी यहाँ, बड़ी दीदी रहती थी, उनको मालूम था। और दादी जी को जैसे बाबा आज ही सब हैंड ओवर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो बाबा ने दादी को सब दिखाया। फिर भोजन के बाद थोड़ा विश्राम किया, 4 बजे बाबा फिर ऑफिस में गए शाम को, और ईशु दादी को कहा, क्योंकि 4 बजे पोस्ट आती थी दोबारा, कि बच्ची सब पत्रों का आज बाबा फिर जवाब देंगे। तो ईशु दादी ने कहा, बाबा शनिवार है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बाबा कोई बात नहीं, आज नहीं कल जवाब देंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं आज ही बाबा सब जवाब देंगे, क्योंकि जैसे बाबा बताते हैं ना, अब एक मुरली में आता है कि अंत तक बाबा ने सेवा की, मम्मा ने भी अंत तक सेवा की, तो बेफिक्र बादशाह बन के सेवा की, मैं बीमार हूँ सो गए, ऐसे नहीं, बेफिक्र बादशाह थे, बाबा को तन दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा, नहीं आज भी बाबा पत्रों का जवाब देंगे। तो पत्रों का जवाब दिया। फिर दादी प्रकाशमणि गई बाबा के पास, बाबा आज ठंडी बहुत है बाबा, थोड़ा क्योंकि रात्रि क्लास भी बाबा कराते थे, 8:30 से 9:30 बजे तक क्लास कराते थे बाबा, रात्रि क्लास, तो बाबा बहुत ठंडी है, और ऐसे करे कि थोड़ा जल्दी 7:30 बजे भोजन की बजाय 6:30 बजे भोजन हो जाए, और 7:30 से 8:30 बजे तक बाबा मुरली चलाएं, क्योंकि ठंडी बहुत है। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो भोजन 6:30 बजे हो गया और बाबा 7:30 बजे हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाने आए, और मुरली लगभग 8:30 बजे पूरी की, 7:30-8:15 आए होंगे, और मुरली पूरी करके बाबा ने नमस्ते किया, गुड नाइट नमस्ते करके बाबा उठे, और उठ करके हिस्ट्री हॉल में दरवाजा जो है वहां तक बाबा पहुंचे और खड़े हो गए, और फिर बच्चों की तरफ मुड़े और वो 3 शब्द बाबा ने उच्चारण किए, बच्चे सदा याद है, निराकारी निरंकारी निर्विकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी, बस बिल्कुल जैसे निश्चिंत हो गए, और बिल्कुल मुरली चलाई, सब किया, पूरा कारोबार पूरा हो गया, और जैसे कमरे में गए बाबा की याद में बैठे रहे, बिल्कुल अशरीरी बन के बैठे बिल्कुल, और दादी जी सामने गए, दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा ने आंखें खोली, और जैसे अशरीरी बन के बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, और उसी दृष्टि और हाथ बस उसी समय बाबा अव्यक्त हो गए, 1 सेकंड का खेल था, बाबा बैठे बैठे अव्यक्त हुए, बिना अव्यक्त हो गए। और उसके बाद दादी को लगा ये क्या हुआ, ये कैसे हाथ, ये बिल्कुल जैसे नहीं ढीले पड़ गए, सिर झुक गया होगा। तो बाबा को लिटाया, फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर तो जवाब दिया, पर उस समय वो दृष्टि और हाथ की शक्ति से दादी जी में इतनी शक्ति आई कि किसी को रोने नहीं दिया, किसी को भी रोने नहीं दिया बिल्कुल। और सब जगह उस समय ईमेल और वो फैक्स और फोन भी नहीं चल रहा था, तो उस समय लाइटनिंग कॉल होता था, लाइटनिंग 8 गुना ज्यादा पैसा, और मैनुअल होता था, यहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज है माउंट आबू में, वहां पूछना पड़ता था कि हमको ये फलाने शहर का फोन चाहिए, तो वो फोन करो, फिर वो देते थे वहां के टेलीफोन एक्सचेंज वाले, तो वो भी बंद हो गया, वो भी नहीं चले, तो 8 गुना ज्यादा लाइटनिंग कॉल करना पड़ा, और उसके आधार से मेन सेंटर्स को इन्फॉर्म किया, और वो भी क्या कहा, ड्रामा याद है, बाबा अव्यक्त हुए हैं, जल्दी मधुबन आओ, ये दादी जी ने टेलीफोन में कहा, और कई जगह टेलीग्राम करवाया, लोगों को तो आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया, पर दादी जी ने किसी को भी रोने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शक्ति थी बड़ी दादी जी तम, और कैसे सभी पहुंच गए, और कई ट्रांस मैसेंजर्स को ये पहले से ही अनुभव हुआ, ट्रांस में अनुभव हुआ कि कैसे बाबा अव्यक्त हुए, पर वो बताए कैसे, कि हमने अभी कोई बताए कोई संदेश ही कि ऐसे मैंने देखा कि बाबा ने देह छोड़ी है, तो बताए कि नहीं बताए कैसे, तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन कई बार बाद में उन्होंने बताया कि हम लोगों को ये अनुभव हुआ था। और फिर तो देखो कैसे, उस समय संतरी दादी थी, बाबा के साथ रहती थी संतरी दादी, वो तो बाबा की बहुत पावरफुल मैसेंजर थी, ट्रांस मैसेंजर। बाबा को कुछ भी संदेश देना होता था, कुछ पूछना होता था, तो बाबा उनको कहते थे जाओ बच्ची जाओ वतन में, क्योंकि बाबा का अव्यक्त रूप देखते थे साकार, कैसे अव्यक्त रूप में शिव बाबा उनके तन में देखती थी वो, और भी ट्रांस मैसेंजर देखते थे कि जाओ बच्ची जाओ वतन में बाबा से पूछ के आओ, और बाबा दृष्टि देते थे एक सेकेंड में उड़ जाती थी। तो बाबा उनको दृष्टि देते समय कहते थे बच्ची गो सुन कम सुन, बस वो गई, बाबा को सुनाया वतन में अव्यक्त बाप दादा को, और संदेश लेकर के आ जाती थी एक सेकेंड। इसलिए दादी उनका नाम ही रखा था गो सुन कम सुन दादी। फिर तो बहुत बाद में तो ये गो सुन कम सुन की टोली मिलती थी हरे को, मिश्री बादामी मिलती थी, ये गो सुन कम सुन की टोली है, मिश्री बादामी इलायची, ये तीन चीजें हर एक को बाबा देते थे, मम्मा भी दे या मम्मा देती थी, फिर दीदी देती थी, दादी जी देते थे। तो अभी ये रस्म पूरी हो गई, अभी इतना नहीं करते, लेकिन शुरू में तो बहुत था कि दो सुन कम सुन की तो टोली नहीं मिली, लेकिन बाबा को देखा कि कैसे न्यारे हो गए, मम्मा को भी देखा, मम्मा को कैंसर था, काफी स्प्रेड हो चुका था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, यहां तक कि 6 मास से ज्यादा मम्मा नहीं रहेगी। तो बाबा को बताया गया कि बाबा डॉक्टर ऐसे कहता है, मम्मा को बताएं? बाबा ने कहा बताओ, मम्मा को बताओ, क्योंकि उस समय दवाई भी नहीं थी ना, कोई ऐसी दवाई नहीं थी, और मम्मा को बताया, और मम्मा को, मम्मा ने सुन करके बिल्कुल जैसे न्यारी हो गई, घबराहट की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि अशरीर हो जाती थी, यही दादियों की विशेषता, मम्मा बाबा की विशेषता थी, एकदम अशरीरी हो गई। और कैसे फिर अंतिम यहाँ ही मम्मा रही, और लास्ट दिन शरीर छोड़ने से पहले ये अंगूर यहाँ पर तैयार हो गए थे, जो बाबा की झोपड़ी के सामने अंगूर की बेलें थी, वो उसी दिन 24 जून को ही तैयार होती थी, और वो सवेरे निकाली थी, और मम्मा से पूछा, बाबा ने पूछा, बाबा मम्मा आप अंगूर खिलाएंगे सबको? मम्मा ने कहा हाँ, और मम्मा ने लेटे लेटे, क्योंकि मम्मा के अंदर वो ताकत ही नहीं थी जो खड़ी बैठ करके भी दे सके, और दृष्टि देती गई, अंगूर ऐसे देती गई देती गई देती गई, आधा पौना घंटा बस बाबा की याद में, और आत्मा उड़ गई। आप सोचो अंत में भी सेवा करके गई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाय हाय करेंगे, हाय हाय वाह वाह करेंगे, वाह वाह करेंगे। तो बेफिक्र बादशाह, ये शरीर तो बाबा को दे दिया, ये तन बाबा का, मन बाबा का, धन बाबा का, सब कुछ बाबा का है, तो एक बिल्कुल निश्चिंत जीवन हम जिएंगे, क्योंकि बाबा बैठा है। आज भी बाबा ने कहा कि बाबा को यूज करो, बाबा को सब दे दो, बाबा को बता दो, बाबा को जिम्मेदारी दे दो। तो जब बाबा को जिम्मेदारी देंगे तो हम क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बेफिक्र बादशाह। तो जब ब्रह्मा बाबा के सामने बातें आई होगी, मम्मा के सामने आई होगी, हम लोगों के सामने थोड़ी ऐसी बातें है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से बट्टी से क्या होकर के जाएंगे सभी, बेफिक्र बादशाह, तब बाप समान बन सकेंगे। दृष्टि वृत्ति स्मृति हर क्षण हर श्वास हर संकल्प में बिल्कुल बेफिक्र, बाबा की दुआओं से पल रहे हैं, बाबा के शक्ति मिल रही है, और वही शक्ति से आगे बढ़ना है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
ओम शांति। बेफिकर बादशाह बाप दादा के अनुभवों के आधार से शिलू बहन ने हम सभी को बताया। गुजराती में बेफिकर मतलब बेमना दो होता है, तो दो प्रकार की फिकर करना है, तो दो प्रकार की फिकर मना बाप को और घर को याद करना, ये फिकर जरूर रखना। ऐसा ना हो कि सब कुछ याद रहे और ये दो भूल जाए। तो बाप और घर की जहाँ स्मृति रहती है वहाँ हम बेफिकर बादशाह रहते हैं। तो शिलू बहन का हम धन्यवाद करते हैं।